लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे चीन के कैथलिकों के लिए याचना करते हैं, ताकि कठिनाइयों के बावजूद चीन के लोग सुसमाचार में अपने विश्वास को सुदृढ़ करें तथा एकता में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत सिस्टर रानी मरिया की जीवनी पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत की कलीसिया एक धनी कलीसिया है जिसने कई महान संतों को जन्म दिया है। उन संतों ने भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया है। संतों ने अपने सुंदर जीवन से न केवल भारत किंतु विश्वव्यापी कलीसिया को भी प्रेरित किया है। हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो वस्तु जिस मतलब से बनी है उसे पूरा करना उस वस्तु के लिए बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो वह वस्तु बेकार हो जाती है। इसी भांति मनुष्य के लिए सबसे जरूरी है ईश्वर को प्राप्त करना, नहीं तो उनका सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। धन्य सिस्टर रानी मरियम का जन्म 29 जनवरी 1954 को केरल के एक ख्रिस्त परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही सेवा कार्य करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्म समाज में प्रवेश करने का निश्चय किया। जब उन्होंने परिवार में अपने निर्णय की जानकारी दी तब उसके भाई बहनों ने इसका विरोध किया, किंतु उनके पिताजी ने उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया। 3 जुलाई 1972 को मरियम और उनकी चचेरी बहन ने फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्म समाज में प्रवेश किया। धर्म समाज में प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों को पार कर उन्होंने 1 मई 1974 को प्रथम व्रत धारण किया। वे प्रशंसित और होशियार थीं, सब कामों को उत्तमता से करती थीं तथा किसी चीज से शिकायत नहीं करती थीं। उचित एवं न्याय की बातों को जल्द स्वीकार करती थीं और चीजों को खुलकर बोलना पसंद करती थीं। तीर विनती के रूप में वे लगातार यीशु का नाम लेती थीं, जिसको उन्होंने अंतिम सांस लेने तक जारी रखा। एक धर्म बहन के रूप में 1975 में उन्हें बीजनौर के संत मेरी स्कूल में शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। वहां वे स्कूल में शिक्षा देने के साथ गांव के गरीबों की मदद करती थीं। 22 मई 1980 को उन्होंने अपना अंतिम मन्नत ग्रहण किया। सिस्टर मरिया को 21 जुलाई 1983 को सातना धर्म प्रांत के सामाजिक सेवा विभाग की संयोजिका नियुक्त किया गया। उन्होंने वहां गरीब और पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम किया। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। आदिवासियों को जागरूक किया जो धनी लोगों के कर्ज के जाल में फंस रहे थे। गरीबों को विकास की योजना से लाभ दिलाया। देश में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति उन्हें जागरूक किया। यही कारण था कि वे गरीबों का शोषण करने वाले लोगों के विरोध के शिकार बने। उन पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया और उनका जीवन हर समय जोखिम में रहता था। 25 फरवरी 1995 को सिस्टर रानी मरिया को इंदौर जाना था, जहाँ से भोपाल होकर वे अपने घर केरल चली जाती, किन्तु बस पड़ाव पर पता चला कि बस रद्द हो गई है। उन्हें मालूम हुआ कि एक बस कॉन्वेंट स्कूल के सामने मिलेगी। इस बस में 50 यात्री सवार थे और 3 लोग अलग अलग स्थानों पर सिस्टर रानी मरिया की हत्या के इरादे से बैठे थे। सिस्टर मरिया के पास समुद्र सिंह आकर बैठा। समुद्र सिंह का साथी जीवन सिंह रानी मरिया को आदिवासियों का धर्मांतरण करने के नाम पर अपमानित करने लगा। 2 गांवों के लोगों के विवाद में जीवन सिंह घायल हुआ था। इस विवाद में पुलिस ने कई बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया था। जीवन को लग रहा था कि सिस्टर ने ही यह हमला कराया था। अतः जीवन से गुस्से में था और सिस्टर से बदला लेना चाहता था। बस उदयनगर से 20 किलोमीटर दूर जंगल में पहुंच चुकी थी, तभी समुद्र सिंह ने बस रुकवाई और बस से उतरकर एक नारियल फोड़ा और उसे तोड़कर यात्रियों के बीच प्रसाद बांटा। उसने नारियल का एक टुकड़ा रानी मरिया की ओर बढ़ाया, किंतु तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। सिस्टर रानी मरिया ने पूछा, आज तुम क्यों इतने खुश हो? तब उसने चाकू निकालकर कहा, इसके लिए, और उसके पेट में चाकू मार दिया। उसके बाद लगातार चाकू मारता रहा, बस रोक दी गई। सिस्टर रानी मरिया बचाने के लिए मदद की गुहार करती रही, किंतु कोई भी यात्री उनको बचाने के लिए आगे आने का साहस नहीं किया और अंत में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पोस्टमार्टम में पाया गया कि सिस्टर रानी मरिया को छोटे बड़े कुल 54 घाव लगे थे। सिस्टर रानी मरिया को सेंट पापा फ्रांसिस ने 23 मार्च 2017 को धन्य घोषणा हेतु अनुमोदन दिया एवं 4 नवंबर 2017 को उन्हें इंदौर में धन्य घोषित किया गया। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत धन्य सिस्टर रानी मरिया की जीवनी पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे।
मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए है तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए है तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया जिया लेने, क्योंकि यीशु भला है।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक गलत फहमी। लेखिका है समता बोरेकर। श्रोताओ, परिवार वह स्थान है जहां हम सभी खुलकर बातें करते और मिलजुल कर रहते हैं, पर कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश घर के सदस्य ने अपनी कुछ बात आपको न बताई हो और आप उनसे बिना पूछे उसका अपने मन से अर्थ निकालते हैं। यह सही या गलत भी हो सकता है और आप ऐसा निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो आपको खतरनाक कदम लेने के लिए मजबूर कर सकता है। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। कोई गलत कदम लेने से पहले आप साहस करके उस मुद्दे को साफ साफ और सही तरीके से प्रस्तुत करें और उनकी बातें खुले मन से सुने। शक और गलत फहमी को कभी अपने जीवन में, अपने रिश्ते में स्थान ना दें। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं समता बोरेकर का लिखा नाटक गलत फहमी।
अच्छा अरे बाबा रे, 10 बज गए और ये नीतू अब तक नहीं आई।
तेरे ऐसे उछलने कूदने से नीतू प्रकट नहीं हो जाएगी। अरे रास्ते में होगी बेटा, आती ही होगी। तू तो अपना नाश्ता कर ले जल्दी से, और मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तैयार होती हूँ।
ओ फोन करती हूँ नीतू को। हेलो। ओफो, ये मम्मी, ये फोन डैड है अपना, लैंडलाइन। मोबाइल भी जाने कहाँ रख दिया मम्मी ने। मम्मी आपका मोबाइल नहीं मिल रहा।
अरे ठीक से देख ना बेटा, मिल जाएगा।
हाँ ये रहा। अरे रिंग बज रही है मगर फोन नहीं उठा रही है नीतू। आप शायद रास्ते में होगी। ओहो आज तो बहुत लेट हो जाएंगे। अरे ये मम्मी के फोन पे इतने सारे अनरीड मैसेज हैं। ये मैसेज किसका है? ये तो डॉक्टर रंजन, इनका नाम तो मैंने कभी नहीं सुना मम्मी से। चलो मैसेज देखती हूँ क्या भेजा है। तू ही इश्क और प्यार, तू ही सुरमई रात, तू ही मेरे अक्स, तू ही रुदाली का एहसास, तू ही जन्नत, तू ही इबादत, तू रवायत, तू ही एहसास, एहसाने इश्क का तू सुरूर, तू रसम, तू रिवाज, तू ही तस्वीर, तेरे प्यार का बाशिंदा मैं, तुझे दिल से चाहूंगा कयामत तक। हाँ ये कैसा मैसेज है मम्मी के फोन पे? अरे ये इस नंबर से तो और भी मैसेज हैं। छी, ये रोमांटिक मैसेज मम्मी को।
आशी, आशी।
ओ ओ नीतू आ गई।
अरे आशी नाश्ता तो किया ही नहीं। आशी
वो तो गई दीदी। आप बस उसे आवाज लगाती रह गई और वो फुर्र से चली गई।
अरे देख ना रानू, ये लड़की भी खाती वाती कुछ भी नहीं है, ठीक से परेशान करके रख दिया है इसने तो।
सही कह रही हैं आप, पर चिंता मत करो दीदी, 2 बजे जब मैं लंच पे आऊंगी ना, तब वो लौट आएगी और उस वक्त खाने के साथ मैं उसको डांट भी पिलाऊंगी।
रानू अब तुम्हारा ही तो सहारा है मुझे।
अरे रे नहीं दीदी, सच तो ये है कि आपने मुझे सहारा दिया, सच। अपने घर में ही नहीं अपने दिल में भी जगह दी है आपने मुझे। आपकी रिकमेंड से ही तो हॉस्पिटल में नौकरी मिली है ना दीदी, सच बात है।
अरे चल 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 बस कर, बहुत तारीफ कर दी तूने, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है और तुम्हें भी, शाम को मिलते हैं ठीक है।
सुन सो राशि, आज फिर तू बिना नाश्ता खाए चली गई थी। बेटा मम्मी परेशान होती है। अच्छा तूने खाना खाया कि नहीं, चल बता तू।
मुझे भूख नहीं है। अच्छा रानू मासी, आजकल मम्मी कुछ बदल गई है ना?
नहीं तो वैसी ही तो है, 2 कान 1 नाक और 2 आंखें।
ओहो आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है।
बेटा ज्यादा नहीं सूझते, अब थोड़ी देर सो जा, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। ठीक है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं, बाय बाय।
आशी, अरे आशी आ गई बेटा, भूख लगी होगी ना तुझे, सैंडविच बना के रखे हैं, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, आजा आजा।
पहले आप बताओ आपका मोबाइल कहाँ है?
अरे आते ही मोबाइल, क्यों पहले खा लो ना फिर ले लेना।
नहीं मुझे नहीं खाना, आपका मोबाइल कहाँ है, आप दो ना उसे।
अरे यार ये आजकल के बच्चे, क्या है आशी मोबाइल में ऐसा?
वो मम्मी वो जूलॉजी का एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, गूगल सर्च करना है।
अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे बैग में होगा ले ले।
डॉक्टर रंजन के 5 मैसेज। ये बात, ये तबस्सुम, ये नाज, ये निगाहें, आखिर तुम ही बताओ क्यों करना तुम्हें चाहे।
आशी आशी आओ बेटा, खाने का वक्त हो गया है। आशी अरे सुनती क्यों नहीं है? ए आशी देखना, अरे देखना इधर, ये सूट पहन लूं क्या आज? देखना अच्छे से।
मुझे नहीं पता।
अरे देख तो सही।
मम्मी आज तक तो आपने कभी पूछा नहीं।
अरे अच्छा ये अच्छा लग रहा है ना?
नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा।
अरे कहाँ जा रही हो, आशी।
हेलो, क्या आप रेखा पुरोहित बोल रही हैं?
जी हाँ, बोल रही हूँ।
देखिए, मैं नोबल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी बेटी यहाँ एडमिट है, आप जल्दी आ जाइए।
क्या क्या हुआ है, क्या हुआ है मेरी आशी को?
देखिए, इस बच्ची ने चूहे मार दवा खा ली है। इट्स अ अटेम्प्ट टू सुसाइड।
जी, ये आप क्या कह रहे हैं?
देखिए, अभी वो ठीक है, चूहे मार दवाई में पॉइजन कम था, ये बहुत अच्छी बात थी। शाम तक आप उसे घर ले जा सकती हैं, आप तब तक बिल क्लियर कर दीजिए।
आशी, आशी मेरा बेटा, ऐसा क्यों किया तूने? कैसे जीती बेटा? तूने तो सोचा भी नहीं कि कैसे मुझे छोड़कर जाने की बात की तूने। अरे, तेरे दिमाग में ये सब आया कैसे?
छोड़कर तो आप जाने वाली थी मम्मी, मैं आपके बिना जीना नहीं चाहती मम्मी।
आशी, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा रही हूँ बेटा? तुझे किसने कहा कि मैं जा रही हूँ?
आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आप डॉक्टर रंजन से शादी करने वाली हो, लेकिन मैं अपने पापा की जगह किसी को नहीं दूंगी। आप उनसे शादी करके चली जाओगे मुझे छोड़कर। मैं मरना चाहती हूँ।
आशी मेरा बेटा।
दीदी दीदी, आप जाइए, मैं इसे समझाती हूँ।
नहीं, मुझे मुझे किसी से बात नहीं करनी।
बेटा, तुम अपनी मम्मी को गलत समझ रही हो, दीदी कोई शादी नहीं कर रही है।
नहीं, आप झूठ बोल रही हो मासी। मैंने खुद मम्मी के मोबाइल पर डॉक्टर रंजन के मैसेज पढ़े हैं।
आशी बेटा, कभी कभी आंखों देखे भी सच नहीं होती। वो रोमांटिक मैसेज जो तुमने तुम्हारी मम्मी के मोबाइल पर पढ़े ना, वो सारे मेरे लिए हैं बेटा।
हाँ, मतलब बासी?
आशी, मैं जिस हॉस्पिटल में अकाउंटेंट हूँ ना, डॉक्टर रंजन ने कुछ दिनों पहले ही वहाँ ज्वाइनिंग ली है। उन्होंने एक दो बार की मुलाकातों के बाद ही मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया।
अच्छा।
जब मैंने दीदी को ये बात बताई तो वो बोली कि कोई डॉक्टर किसी अकाउंटेंट से इतनी जल्दी शादी के लिए उत्सुक हो, ये बात गले नहीं उतर रही है। फिर उन्हें चेक करने के लिए हम दोनों ने एक प्लान बनाया। तुम्हारी मम्मी ने डॉक्टर रंजन की एक पेशेंट के नाम से उन्हें मैसेज किया और कहा कि उन्हें देखते ही उनको प्यार हो गया है। अगर वो ईमानदार होते तो उन्हें डांटते, समझाते, मगर उल्टे वो खुद ही उन्हें रोमांटिक मैसेज भेजने लगे। डॉक्टर रंजन का कैरेक्टर हमारे सामने आ गया। हमारा प्लान था कि कल उसे किसी रेस्टोरेंट में बुलाकर उसे खूब सबक सिखाएंगे, मगर इधर तुमने गलतफहमी हो गई और तुमने आत्महत्या का कदम उठा लिया। आशी, तुमने अपनी मम्मी को बहुत दुख दिया बेटा।
I'm sorry, मासी। मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी।
मैं यही हूँ बेटा।
सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी।
कोई बात नहीं बेटा, शुक्र है तुम्हारी गलतफहमी तो दूर हो गई और ये पता चल गया मुझे कि मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है।
गलतफहमी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटक सुना। इस नाटक के कलाकार थे भवानी कौल, दुर्गेश नंदिनी, संतोष जोशी और समता बोरेकर। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।